ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राज्य कोष से निवेश वाले निकायों के पदाधिकारियों की सेवा सुविधाओं में एकरूपता बनाए रखने के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट लागू करने का मंत्रिपरिषद की बैठक का निर्णय। आगामी मांग 11 को राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव में सहकार्य करने का कांग्रेस और एमाले का निर्णय। और ईरान में हुई हिंसक घटना में कम से कम 35 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राज्य कोष के खर्च पर चल रहे निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधाओं में एकरूपता लाने संबंधी सुझाव कार्यदल के प्रतिवेदन को क्रियान्वयन करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवेदन क्रियान्वयन के लिए अर्थ मंत्रालय द्वारा प्रबंधन किए जाने का निर्णय हुआ है। बता दें कि सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट भाषण में ही राज्य कोष के खर्चे पर चल रहे प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, सार्वजनिक संस्थान, लगायत निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक और सेवा सुविधाओं में एकरूपता लाने की बात कही थी और इसी आधार पर अर्थ मंत्रालय ने सुझाव कार्यदल गठित किया है। मंत्रिपरिषद ने डिजिटल नेपाल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्रस्तावित 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहूलियत दर पर कर्ज लेने संबंध में सैद्धांतिक सहमति देने का निर्णय किया है। इसके अलावा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रथम संशोधन नियमावली 2082 को स्वीकृत करने, नेपाल और भारत सरकारों के बीच स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहकार्य संबंधी परिमार्जित समझदारी पत्र को स्वीकृत करने लगात अन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने की है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जोखिम मूल्यांकन संबंध में प्रदेश स्तर पर ही सुरक्षा संबंधी सूचना संकलन विश्लेषण मूल्यांकन कर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने का प्रदेश के कर्मचारी नेतृत्व और सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश किया है। आज गृहमंत्री अर्याल की अध्यक्षता और गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ की उपस्थिति में हुए मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आगामी चुनाव लगायत संबंध में सभी 7 प्रदेशों के प्रमुख सचिवों एवं कानून मंत्रालयों के सचिवों और सुरक्षा निकायों के प्रमुखों व प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार विमर्श के दौरान उन्होंने ऐसा निर्देश किया। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में राजनीतिक माहौल बनता गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा चुनाव 2082 के लिए आज आयोजित मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला गोष्ठी में कानून मंत्री सिन्हा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में ही चुनाव होगा, ये बताते हुए कि जेनजेड पीढ़ी द्वारा उठाई गई मांगे संविधान संशोधन से पूरे हो सकते हैं। मंत्री सिन्हा ने कहा कि संविधान संशोधन के लिए चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। नेपाली कांग्रेस ने आगामी मांग 11 को राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की आज हुई बैठक में ये निर्णय किया गया। ये जानकारी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने दी। मुख्य सचिव पौडेल ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक कल सुबह 9 बजे फिर होगी। नेकपा एमाले ने राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को सौंपने का निर्णय किया है। पार्टी कार्यालय च्यासल में हुई एमाले सचिवालय बैठक ने अन्य दलों के साथ चर्चा कर उम्मीदवारों पर फैसला करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष ओली को दी है। ये जानकारी उप महासचिव लेखराज भट्ट ने दी। उप महासचिव भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय सभा चुनाव में कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और जसपा नेपाल के साथ गठबंधन किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष ओली के संयोजकत्व में आम चुनाव घोषणा पत्र मसौदा समिति और उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा बादल के संयोजकत्व में चुनाव परिचालन समिति का गठन किया है। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों और केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों को जिम्मेदारियां आवंटित की है। साथ ही बैठक ने आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव की तैयारी के लिए भी विभिन्न समितियां गठित करने का निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि गुणस्तरीय चलचित्र प्रवर्धन के लिए चलचित्र विकास बोर्ड में प्रमाणीकरण समिति आवश्यक है। विधान व्यवस्थापन समिति में आज चलचित्र विधेयक 2081 के ऊपर विचार विमर्श में मंत्री खरेल ने कहा कि गुणस्तरीय चलचित्र प्रवर्धन और सरकारी कोष के संरक्षण के लिए प्रमाणीकरण समिति काम करेगी और इससे चलचित्र क्षेत्र को पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने में मदद मिलेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए ईरान सरकार ने 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। अमेरिका आधारित मानवाधिकार समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी हिंसा में 29 प्रदर्शनकारी समेत 4 बच्चों दूर सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी हैं। ईरान के 31 में से 27 राज्य हिंसा की चपेट में हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कोष से निवेश वाले निकायों के पदाधिकारियों की सेवा सुविधाओं में एकरूपता बनाए रखने के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट लागू करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। आगामी माह 11 को राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव में सहकार्य करने का कांग्रेस और एमाले का निर्णय। और ईरान में हुई हिंसक घटना में कम से कम 35 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।